वचन। नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम को सुनने के लिए आप सब तैयार हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से एस्तर नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ भी मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन यीशु का, धन्य वचन होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन यीशु का, धन्य वचन होगा धन्य जीवन। धन्य है जो नम्र वो होंगे इस पृथ्वी के अधिकारी। ओ धन्य है जो नम्र वो होंगे इस पृथ्वी के अधिकारी। धर्म के भूखे और प्यासों की, धर्म के भूखे और प्यासों की यीशु प्यास बुझाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम इन दिनों पुराने नियम की पुस्तक उसके एस्तर नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने अध्याय 2 उसके 1-4 पद तक का अध्ययन किया था और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि आज हम जो कुछ भी सीखते हैं, सुनते हैं, निश्चित रूप से हम इससे प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, जो निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं। पिता परमेश्वर, आप उनकी भी सहायता करें, उन्हें भी अपनी शांति और आनंद प्रदान करें ताकि वे भी इस बात को समझ सकें कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं और हम इससे प्रत्येक को आज आप आशीष देना चाहते हैं। इस एस्तर की पुस्तक के अध्ययन से हम सबको आशीषित करें। इस समय को हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हमने देखा कि अर्थशत्र राजा अब बहुत निराश और अकेला था, अतः उसके मंत्रियों ने उसे सुझाया कि वह सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन करे और सर्वसुंदरी को चुनकर अपनी रानी बनाए। अतः प्रतियोगिता की घोषणा की गई। तो आइए आज हम आगे बढ़ें। एस्तेर की पुस्तक 2 अध्याय उसके 5 पद में लिखा हुआ है, शूशनगढ़ में मोर्दकै नामक एक यहूदी रहता था जो कीश नाम के एक विन्यामिनी का परपोता, शिमी का पोता और याइर का पुत्र था। एस्तेर की पुस्तक में अब तक का वृतांत मंच के सहारों जैसा ही था। हमें विजातीय दरबार का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। हमें वहाँ की घटनाएं एक विशेष उद्देश्य के निमित्त दर्शाई गई है। यहाँ पर सौंदर्य प्रतियोगिता और एस्तेर का रानी बनना दिखाया गया है, क्योंकि वह रानी बन गई थी। वह अपनी जाति के लिए मध्यस्थता करने योग्य थी। यदि वह रानी नहीं होती तो संपूर्ण यहूदी जाति का सफाया हो जाता। अब हम राजमहल में परमेश्वर का हाथ को देखते हैं। अब तक राजमहल में आत्मिक गतिविधि नहीं थी। वहाँ यथासंभव अभक्त वातावरण था, आमोद प्रमोद का बोलबाला था, परंतु अब परमेश्वर की सर्वोपरि इच्छा पूरी होगी। हम उसका प्रावधान यहाँ पर देखेंगे। वह घटनाओं का क्रम इस प्रकार से सुव्यवस्थित कर रहा है कि समय आने पर उसकी प्रजा यहूदियों के लिए एक मध्यस्थ वहां पर उपस्थित हो। अब कोई इस सौंदर्य प्रतियोगिता पर प्रश्न उठाते हुए कहेगा, ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर सौंदर्य प्रतियोगिताओं का अनुमोदन करता है। जी नहीं, मेरे विचार में तो वह इसके पक्ष में नहीं है। परंतु जब परमेश्वर की संतान उसकी इच्छा के बाहर हो जाती है, तब वह अनेक ऐसी बातें होने देता है जिनका अनुमोदन वह नहीं करता है, और इन घटनाओं द्वारा वह अपनी इच्छा पूरी करता है। इस लघु पुस्तिका एस्तेर में परमेश्वर का सर्वसत्ताधारी सामर्थ एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। आज अनेक विश्वासी परमेश्वर की इच्छा के अंतिम सिरों पर ही अटके हुए हैं। वे परमेश्वर की इच्छा के दिशा निर्देशन में नहीं रहते हैं। हमारी भाषा में वे परमेश्वर की इच्छा में नहीं हैं, परंतु परमेश्वर अपने विधान द्वारा उनका मार्गदर्शन करता है। एस्तेर इसका एक उदाहरण है। मेरे प्रियो, हमारी कहानी आरंभ होती है, शूशनगढ़ में मोर्दकै नामक एक यहूदी रहता था। वह विन्यामिन गोत्र का था। अब एक प्रश्न उठता है कि वह वहां क्या कर रहा था। वह इसराइल के राजसी परिवार का सदस्य था। वह राजा शाऊल के परिवार से था। हम आगे पढ़ेंगे एस्तेर 2 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है कि वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बंधुआई में गया था जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के संग बंदी बना करके ले गया था। परमेश्वर ने यशायाह के मुख से जो भविष्यवाणी की थी उसके अनुसार उसने अपनी प्रजा को स्वदेश लौटने का प्रबंध कर दिया था। राजा कुसरो ने उन्हें स्वदेश लौटने की आज्ञा दे दी थी और परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले स्वदेश लौट गए थे, परंतु उनमें से अधिकांश अपने दासत्व के देश में ही बस गए थे। उन्होंने अन्य जातियों से व्यापार करना सीख लिया था, इसलिए उन्होंने वहीं रहने का चुनाव किया। वे उस स्थान में खुश थे। जब उन्हें स्वदेश लौटने की स्वतंत्रता थी तब वे नहीं लौटे। परमेश्वर की इच्छा को टालने वाले असंख्य यहूदियों में मोर्दकै भी एक था। उसे इस समय इसराइल में होना चाहिए था, परंतु देखिए कि वह कहाँ था। राजमहल में। वह सरकारी नौकरी पर था। आपको स्मरण होगा कि यूसुफ भी मिस्र में मंत्री था, परंतु वह पूर्ण रूप से परमेश्वर की इच्छा में था। दानियल बाबुल के दरबार में नियुक्त था, परंतु वह भी परमेश्वर की इच्छा में था। आप देखेंगे कि एस्तेर की पुस्तक ईश्वरीय विधान की पुस्तक है। जैसा मैं कह चुका हूँ, ईश्वरीय विधान की सर्वमान्य परिभाषा है, परमेश्वर मनुष्य को दूसरे चरण पर कैसे साधता है। जी हाँ, यह पुरुष मोर्दकै यद्यपि परमेश्वर की इच्छा के बाहर था, लौटा कर लाया जाता है, जबकि वह सहायता के लिए परमेश्वर को नहीं निहारता है। आप सोचेंगे कि ऐसे समय में तो वे परमेश्वर को खोजेंगे, परंतु नहीं। इस पुस्तक में तो परमेश्वर का नाम ही नहीं है और न ही प्रार्थना का उल्लेख है, क्योंकि ये यहूदी परमेश्वर की इच्छा में नहीं थे। एस्तेर और मोर्दकै दोनों धर्मशास्त्र में मंद प्रकाश में दिखाई देते हैं, जबकि वे उच्च वर्ग के लोग थे, जैसा कि हम आगे चल करके देखेंगे। मोर्दकै संभवतः अपनी युवा अवस्था में दूसरे निर्वासन के समय यरूशलेम से बंदी बनाकर लाया गया था, यहोयाकीम के राज्य काल में। जी हाँ, प्रथम निर्वासन में सब कुलीन जन, राजकुमार और हाकिम ले जाए गए थे। इसी समूह में दानियल था, और दूसरी बार में मध्य वर्ग के नागरिक बंदी बनाए गए थे, और इस समूह में मोर्दकै था। जब तीसरी बार बाबुल वासी आए, तब यरूशलेम पूरी तरह ध्वंस कर दिया गया था। गरीबी रेखा से नीचे के लोग ही अब वहां पर बचे हुए थे। मोर्दकै की एक रिश्ते की बहन थी, जिसके माता पिता संभवतः नबूकदनेस्सर के आक्रमण में मारे गए थे, क्योंकि उसने बड़ा नरसंहार किया था। तब हम आगे पढ़ेंगे एस्तेर 2:7 में लिखा है, उसने हदसा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तेर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे, और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए, तब मोर्दकै ने उसको अपनी बेटी करके पाला। ध्यान दीजिए, एस्तेर का इब्रानी नाम है हदसाह, अर्थात सितारा। निसंदेह वह एक सितारा ही थी और एक सुंदर स्त्री भी। धर्मशास्त्र के अनुसार मोर्दकै ने उसे अपनी पुत्री स्वरूप गोद ले लिया था। सुंदरता उसका एक महान गुण था। राजा के लिए एक रानी चाहिए, यह घोषणा सुनते ही मोर्दकै में रुचि जागी। वह राजमहल में नौकरी करता था, अतः उसे प्रतियोगिता में आने वाली राजकीय प्रत्येक सुंदरी को देखने का सौभाग्य प्राप्त था। निश्चय ही एस्तेर के साथ उनकी तुलना करके उसने देखा कि वे उसकी पुत्री एस्तेर से अधिक सुंदर नहीं थी, अतः उसने एस्तेर को भी लाना चाहा। एस्तेर की पुस्तक 2:8-9 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवतियां शूशनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गई, तब एस्तेर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिला विलंब राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी, और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। मेरे मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ आप परमेश्वर का विधान परिस्थितियों में देख सकते हैं। मोर्दकै अपनी बहन को सौंदर्य प्रतियोगिता में प्रवेश दिलवाता है। इस मोड़ पर मैं कहूंगा कि मेरे मन में मोर्दकै के लिए सम्मान नहीं है, परंतु कहानी के अंत होने से पूर्व मैं अपने विचार बदल दूंगा, परंतु इस समय वह मेरे लिए घृणा का पात्र है। सबसे पहले तो वह परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा थी कि वे अंतर जातीय विवाह ना करें। वह मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा था। उसकी मनोकामना थी कि एस्तेर रानी बने, परंतु इस प्रतियोगिता का दूसरा पक्ष था कि जो सुंदरिया रानी नहीं बनेंगी, वे राजा के हरम में रखी जाएंगी। यदि एस्तेर प्रतियोगिता जीत नहीं पाई, तो वह राजा की रखेल बना दी जाएगी, उसका जीवन नाश हो जाएगा। परंतु मोर्दकै ने संकट मोल लिया। जी हाँ, यहाँ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर परिस्थिति को अपने हाथ में ले रहा था। एस्तेर राजा के आवास में लाई गई। राजमहल में स्त्रियों पर नियुक्त प्रभारी हेगे एस्तेर को देखकर प्रभावित हुआ और उस पर दया दृष्टि की। उसने एस्तेर की सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए प्रत्येक प्रसाधन का प्रबंध किया, ताकि उसका सौंदर्यीकरण किया जा सके। एस्तेर 2:10 में लिखा है, एस्तेर ने ना अपनी जाति बताई थी ना अपना कुल, क्योंकि मोर्दकै ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे न बताना। स्मरण रखें कि वहां यहूदी बंदी थे। संसार की समस्त जातियों में यहूदी विरोध एक श्राप था। आप नबूकदनेस्सर द्वारा इसराइल के विध्वंस की कहानी को उसकी यहूदी घृणा के बिना नहीं पढ़ सकते। वही उन्हें बंदी बनाकर बेबीलोन लाया था, परंतु अब उसका युग समाप्त हो गया है। अब वहां एक नई जाति का राजा था, परंतु यहूदी विरोध की मानसिकता समाप्त नहीं हुई थी। मोर्दकै इस भावना के प्रति संवेदनशील था, अतः उसने एस्तेर को चिताया कि वह अपनी नागरिकता प्रकट न करे। यह एक प्रकार से स्वधर्म त्याग ही था। वर्षों से धर्म ही उनकी पहचान थी, अतः अपनी नागरिकता को छिपाकर उन्होंने वास्तव में अपने धर्म का त्याग कर दिया था। दासत्व के देश में वे परमेश्वर की इच्छा से बाहर तो थे ही, आज भी जब मनुष्य परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो जाता है या होता है तो वह मसीह में अपने विश्वास की चर्चा बहुत कम करता है। एस्तेर 2 अध्याय उसके 11 पद में लिखा हुआ है, मुर्दकै प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था ताकि जाने कि एस्तेर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। ध्यान दीजिए कि परमेश्वर की इच्छा में रहते हुए आपको यह विश्वास हो जाए कि परमेश्वर सब बातों में भलाई ही उत्पन्न करेगा। मोर्दकै परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता था क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा से बाहर था। अब वह बहुत उतावला है कि परिणाम क्या होगा। वह सोच रहा था कि उसने एस्तेर को प्रतियोगिता में उतार कर गलती तो नहीं की। उसने संकट मोल तो ले लिया था, परंतु अब वह डर रहा था। वह बहुत अधिक चिंतित था। उसकी रातों की नींद भी उड़ गई थी। उसकी दशा ऐसी हो गई थी। परमेश्वर की इच्छा से बाहर आपको चैन नहीं पड़ता है और आप भलाई की आशा भी नहीं कर सकते हैं। इस समय वह परमेश्वर के हाथों में सब नहीं छोड़ सकता था और न ही उसने छोड़ा। मुझे निश्चय नहीं कि उसे परमेश्वर के विधान का बोध था, तथापि परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी कर रहा था। क्या मैं आपको ईश्वरीय विधान की मेरी परिभाषा स्मरण दिला सकता हूँ? ईश्वरीय विधान वह मार्ग है जिसमें परमेश्वर एक भटके हुए विश्वासी को अपने मार्ग में लाता है, और इस बिंदु पर हम परमेश्वर को सक्रिय होता देख रहे हैं। स्थिर का मुख्य स्थान पाना और हर प्रकार का अनुग्रह प्राप्त करना, ध्यान का केंद्र बनना आदि एक संयोग नहीं था। परमेश्वर के काम संयोग से नहीं होते हैं। आगे देखिए सौंदर्यकरण की प्रक्रिया। एस्तेर 2 अध्याय के 12 पद में लिखा है, जब एक एक कन्या की बारी आई कि वह शयस राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। क्या मैं कह सकता हूँ कि आपकी पत्नी यदि सौंदर्य सदन में कुछ घंटे लगाती है तो आप शिकायत न करें? इससे युवतियों के सौंदर्यकरण में 1 वर्ष का समय लगा था। पहले 6 माह उनका रंग उभारा गया और त्वचा का उपचार किया गया, तब 6 माह वे सुगंधित द्रव्यों के उपचार का समय था। मेरे विचार में उन्हें गुलाब जल में भी नहलाया जाता था। आप शारीरिक सुंदरता पर दिया गया बल यहाँ देख सकते हैं। यह अन्य जाति संस्कृति थी। हम परमेश्वर से जितना अधिक दूर जाएंगे उतने अधिक सौंदर्य प्रसाधन दुकानों में दिखाई देंगे। जी हाँ, इन सब सौंदर्य प्रसाधनों को उपयोग के बाद भी हमें निराशा होगी कि हमारी सुंदरता पहले से अधिक नहीं है। इन युवतियों को सौंदर्यकरण की 1 वर्षीय प्रक्रिया से होकर जाना पड़ा था। वर्षों बाद भी स्त्रियों में परिवर्तन नहीं आया है। उस सौंदर्य प्रतियोगिता के लिए स्त्रियों की यथासंभव रूप सज्जा की गई थी कि वे अधिक सुंदर दिखें। आज भी रूप सज्जा साधनों का वृहत उपयोग किया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि रूप सज्जा या एस्तेर के सौंदर्य प्रतियोगिता में जाने पर मेरे साथ कोई सहमत नहीं होगा। स्पष्ट कहूँ तो उसे प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना था। हम यह भी देखेंगे कि उसे रूप सज्जा की आवश्यकता नहीं थी। रूप सज्जा के विरोध में आज कुछ अतिवादी भी हैं। एक महिला मेरे पास आकर कहने लगी कि एक विश्वासी स्त्री को रूप सज्जा नहीं करना चाहिए। उसके विचार में स्त्रियां बहुत अधिक रूप सज्जा करती हैं या अपने आप को संवारती हैं। उसने मुझे उलझन में डाल दिया जब उसने पूछा कि इस विषय में मेरे विचार क्या हैं। मैंने कहा, यह स्त्रियों पर निर्भर होता है। कुछ स्त्रियां रूप सज्जा के बाद बड़ी अच्छी लगती हैं और मेरे विचार में हमें परमेश्वर द्वारा दी गई आशीषों में निखार लाना चाहिए। उसने मेरी बातों को अपने ऊपर ले लिया और मैं कहूंगा कि इसमें उसका अपना कारण था। मेरे मन में आया कि उससे कह दूं, थोड़ी सी रूप सज्जा बहन आप में निखार ले आएगी। मेरे मित्रों, एस्तेर के संदर्भ में ईश्वरीय विधान का पक्ष उसे प्राप्त था, प्रतियोगिता में उसका भाग लेना और प्रभारी का अनुग्रह पाना आदि सब परमेश्वर की ओर से था। हेगे ने सोचा कि एस्तेर ही जीतेगी, अतः उसने उस पर सबसे अधिक ध्यान दिया। यह परमेश्वर की योजना में एक कदम आगे था, यह संयोग नहीं था। उसके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी की जा रही थी। आगे हम पढ़ते हैं इस पुस्तक 2 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी तब जो कुछ वह चाहती कि रनवास से राजभवन में ले जाए वह उसको दिया जाता था। सांझ को तो वह जाती थी और सवेरे को वह लौटकर रनवास के दूसरे घर में जाकर रखेलियों के प्रबंधक राजा के खोजे शशगाज के अधिकार में हो जाती थी और राजा के पास फिर नहीं जाती थी। यदि राजा उससे प्रसन्न हो जाता था तब वह नाम लेकर बुलाई जाती थी। मेरे प्रियो, एक वर्ष की तैयारी के बाद समय आया कि प्रत्येक सुंदरी राजा की उपस्थिति में आए। वह अपनी इच्छा से वस्त्र और गहने मांग सकती थी। शीघ्र ही एस्तेर की बारी आने वाली थी। यदि वह जीत नहीं पाई तो राजा की रखेल बनेगी, जो एक यहूदी स्त्री के लिए भयानक बात थी। यही कारण था कि मोर्दकै तनावग्रस्त था। वह जानता था कि वह परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध और एस्तेर कैसा खतरा मोल ले रही थी, परंतु परमेश्वर की इच्छा इन सब से सर्वोपरि थी। एस्तेर 2 अध्याय के 15 पद में लिखा हुआ है, जब मोर्दकै के चाचा अबीहैल की बेटी एस्तेर, जिसको मोर्दकै ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा। जितनों ने एस्तेर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। जब एस्तेर की बारी आई तो यह निर्णय लिया गया कि उसमें प्राकृतिक सुंदरता है। उसे जिसने भी देखा यही कहा कि यही जीतेगी। वह सबसे अलग और श्रेष्ठ थी। क्या परमेश्वर का हाथ इसमें दिखाई नहीं दे रहा है? जी हाँ, वह अपने विधान की पूर्ति द्वारा सक्रिय है। मेरे प्रियो, वह उसे राजा के साथ सिंहासन पर बैठाएगा। यदि वह वहां नहीं बैठी तो संपूर्ण यहूदी जाति नष्ट कर दी जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो परमेश्वर अपने वचन का उल्लंघन कर रहा है और परमेश्वर का वचन टलता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। उसने कहा कि 70 वर्ष के गुलामी के पश्चात वह अपने लोगों को वापस ले आएगा और यह निश्चय ही वह लाया। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि इस अध्ययन के द्वारा आप अवश्य ही एस्तेर के जीवन से नई बातों को सीख रहे हैं। आने वाले अध्ययन में हम फिर से नई बातों को सीखेंगे, लेकिन इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर जो गुप्त रूप से कार्य करता है अपनी इच्छा किसी न किसी रूप से पूरा करता है। मेरे मित्रों, कई बार हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर को स्मरण नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। वह आपको कभी छोड़ता नहीं है। मैं नहीं जानता कि आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। हो सकता है कि आप भी मोर्दकै और एस्तेर की तरह परमेश्वर की निकटता में नहीं हैं। आप उसे भूल गए हैं और वापस यरूशलेम में नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वह चाहते हैं कि आप उसके पास आ जाएं। वह आपके जीवन को आशीषमय बनाना चाहते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम इस बात को अपने जीवन में गांठ बांध कर रख लें कि परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता है। उसने कहा है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा, तो आप निश्चय जानें कि वह आपको नहीं छोड़ेगा, वह आपको नहीं त्यागेगा। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वह आपसे निश्चय ही प्रेम करेगा और वह चाहेगा कि आप बचाए जाएं। इसी बात को हम अगले अध्ययन में देखेंगे। आज हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। एवं सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। Thank you.